नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। ईरान ने परमाणु संयंत्रों पर हमले के प्रतिशोध में इसराइल के दिमोना और नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्रों के आसपास मिसाइलें दागी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे के भीतर होर्मुज जल डमरू मध्य नहीं खोलने पर ईरान के बिजली संयंत्रों पर बड़ा हमला करने की धमकी दी। वैश्विक तेल की बढ़ती कीमतों के बीच श्रीलंका ने ईंधन की कीमतों में 24-30% की वृद्धि की। और स्क्वैश में इंडियन ओपन के फाइनल में वीर चोटरानी और अभय सिंह के बीच मुकाबला आज मुंबई में। अब समाचार विस्तार से। ईरान के मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल के दिमोना और नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र के आसपास मिसाइलें दागी गई हैं। बताया जा रहा है कि ये हमले ईरान के बुशहर और नतांज स्थित परमाणु संयंत्रों पर अमरीका इसराइल के हमलों के प्रतिशोध में किए गए। हालांकि इसराइली अधिकारियों ने परमाणु संबंधी स्थलों पर किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
ईरान और अमरीका इसराइल के बीच संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है। अब इस संघर्ष में परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान ने इसराइल के परमाणु संयंत्रों के आसपास के क्षेत्रों को निशाना बनाया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अराद के महापौर यायार मायन के साथ बातचीत की। उन्होंने दिमोना और नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास ईरान के हमले में घायल हुए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसराइल के विदेश मंत्रालय के अनुसार इस हमले में बच्चों सहित 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उधर महापौर यायार मायान ने जानकारी दी कि प्रभावित इलाके से लगभग 150 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात में रास अल खैमाह के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वायु रक्षा प्रणालियों ने आने वाले खतरों को निष्क्रिय कर दिया है। अधिकारियों ने कहा कि निवासियों से आग्रह किया गया है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें और सोशल मीडिया पर अपुष्ट वीडियो या अफवाहें ना साझा करें। ये अवरोधन ऐसे समय में हुए हैं जब पिछले कुछ दिनों से ईरान द्वारा संयुक्त अरब अमीरात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने पहले रास अल खैमाह पर हमले की धमकी दी थी और निवासियों को तुरंत क्षेत्र खाली करने को कहा था। कोर का कहना है कि इस शहर को इसीलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि इसका इस्तेमाल ईरानी द्वीपों पर हमले करने के लिए किया गया था। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर तेहरान 48 घंटे के भीतर होर्मुज जल डमरू मध्य को नहीं खोलता है तो अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों पर बड़ा विनाशकारी हमला करेगा और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर यह अल्टीमेटम जारी किया जिसमें उन्होंने ईरान को महत्वपूर्ण जलमार्ग खोलने के लिए ठीक 48 घंटे का समय दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान के विभिन्न बिजली संयंत्रों को निशाना बनाएगा जिसकी शुरुआत सबसे बड़े संयंत्र पर हमले से होगी। 22 देशों ने ईरान से हमले रोकने और होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने का आग्रह किया है। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया सहित इन देशों ने संयुक्त बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और ऊर्जा केंद्रों पर ईरान के हमलों की निंदा की। इन देशों ने चेतावनी दी कि ऐसे कार्यों का प्रभाव विश्व भर में विशेष रूप से गरीब देशों पर पड़ेगा। इस बयान में ईरान से जल मार्ग में वाणिज्यिक यातायात को अवरुद्ध करने के लिए बारूदी सुरंगें बिछाने, ड्रोन और मिसाइल हमलों को तुरंत रोकने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 का पालन करने का आह्वान किया गया है। नेताओं ने तेल और गैस प्रतिष्ठानों सहित नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों पर तत्काल व्यापक रोक लगाने की भी मांग की। श्रीलंका की सरकारी कंपनी सीलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने पेट्रोलियम पदार्थों के कीमतों में बड़ी वृद्धि की है। कीमतों में 24-30% तक की बढ़ोतरी की गई है। केरोसिन तेल के दाम 60 रुपए से बढ़ाकर 255 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। कीमतों में वृद्धि के लिए पश्चिम एशिया संघर्ष और वैश्विक तेल की बढ़ती कीमतों में उछाल को वजह बताया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के बाद से दूसरी बार ये बढ़ोतरी हुई है। प्रमुख ईंधन श्रेणियों में कुल वृद्धि लगभग 35% हो गई है, जो श्रीलंका की आयात निर्भर अर्थव्यवस्था पर वैश्विक ऊर्जा बाजार के प्रभाव को दर्शाती है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमरीका यूक्रेन वार्ता से पहले रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष में 4 लोग मारे गए। ज़ापोरिज़्या में एक घर पर रूस के ड्रोन हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 बच्चों सहित 6 लोग घायल हुए। क्षेत्रीय प्रमुख इवान फेदरोव ने बताया कि हमले की वजह से चेर्निहिव क्षेत्र के अधिकांश हिस्से में बिजली भी बाधित हो गई। रूस में गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लादकोव ने बताया कि बेलगोरोद सीमाई क्षेत्र में यूक्रेन की गोलाबारी में 2 महिलाओं की मौत हो गई और 1 अन्य घायल हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रुकी हुई वार्ता फिर से आरंभ करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल अमरीका गया है। बताया जा रहा है कि वार्ता मियामी में होगी। रूस का यूक्रेन के लगभग 20% हिस्से पर नियंत्रण है। तिब्बत की निर्वासित सरकार के नेताओं ने चीन द्वारा पारित जातीय एकता और प्रगति प्रोत्साहन कानून की कड़ी निंदा की है। एक रिपोर्ट।
निर्वासित सरकार के नेताओं ने कहा कि इससे तिब्बत और अन्य क्षेत्रों में चीन का दमन और अधिक बढ़ेगा। 12 मार्च को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा हस्ताक्षरित कानून इस वर्ष 1 जुलाई से लागू होगा। तिब्बती नेताओं ने इस कदम को दीर्घकालिक दमनकारी कार्रवाई बताया है, जो तिब्बती वीगर और अन्य अल्पसंख्यक संस्कृतियों को तेजी से नष्ट करेगा। तिब्बती नेतृत्व ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस कानून के कार्यान्वयन पर कड़ी निगरानी रखने और अधिकारों तथा सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर इसके प्रभाव पर चिंता व्यक्त करने का आह्वान किया है। चीन के जातीय एकता और प्रगति प्रोत्साहन कानून को चीन के 55 आधिकारिक मान्यता वाले जातीय अल्पसंख्यकों को बहुलतावादी हान चीनी आबादी में मिलाने के कानूनी तंत्र के तौर पर देखा जा रहा है। इससे मानवाधिकार उल्लंघन की आशंका बढ़ रही है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
क्यूबा में एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार विद्युत आपूर्ति ठप हो गई, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। क्यूबा के ऊर्जा मंत्रालय ने घोषणा की कि पूरे द्वीप में एक बार फिर बिजली आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे 1 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि आपूर्ति बहाल करने के लिए प्रोटोकॉल लागू किए जा रहे हैं। कल की कटौती से ठीक पहले देश की सरकारी बिजली कंपनी ने बताया था कि उसे कल रात 1704 मेगावाट बिजली की कमी की आशंका है। क्यूबा गंभीर ईंधन संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि अमरीका वेनेजुएला से तेल आपूर्ति को अवरुद्ध रखे हुए है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने नस्लवाद जैसी पुरानी बुराई से निपटने के लिए एकजुटता और ठोस कार्रवाई का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि नस्लवाद आज भी दुनिया के हर समुदाय, समाज, देश और क्षेत्र में मौजूद है। नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर अपने संदेश में गुतरश ने कहा कि नस्लवाद उपनिवेशवाद, गुलामी और उत्पीड़न की विरासत में जीवित है, जो आज भी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक असमानताओं को बढ़ावा देता है। आज विश्व जल दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से पानी की हर बूंद के संरक्षण और उसके जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का आह्वान किया। इंडियन ओपन स्क्वैश टूर कॉपर टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबलों में आज मुंबई में पुरुष सिंगल्स में भारत के वीर चोटरानी का सामना हमवतन अभय सिंह से होगा। महिला वर्ग में अनाहत सिंह का मुकाबला मिस्र की हाना मुअताज से होगा। वीर चोटरानी ने मलेशिया के संजय जीवा को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं अभय सिंह ने मलेशियाई खिलाड़ी को हराया था। अनाहत सिंह ने सेमीफाइनल में तन्वी खन्ना को 3-1 से मात दी। महिला टी20 क्रिकेट के इतिहास में रवांडा की फैनी उतागू शिमानिंदे सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। सलामी बल्लेबाज उतागू शिमानिंदे ने नाइजीरियाई इन्विटेशनल महिला टी20 टूर्नामेंट में ये उपलब्धि हासिल की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईरान ने परमाणु संयंत्रों पर हमलों के प्रतिशोध में इसराइल के दिमोना और नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्रों के आसपास मिसाइलें दागी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे के भीतर होर्मुज जल डमरू मध्य नहीं खोलने पर ईरान के बिजली संयंत्रों पर बड़ा हमला करने की धमकी दी। वैश्विक तेल की बढ़ती कीमतों के बीच श्रीलंका ने ईंधन के कीमतों में 24-30% की वृद्धि की और स्क्वैश में इंडियन ओपन के फाइनल में वीर चोटरानी और अभय सिंह के बीच मुकाबला आज मुंबई में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।